Hare Krishna. It is our very great fortune to listen His Grace Sarvabhauma Prabhuji on Srimad Bhagavatam 5th Canto 4th Chapter Verse Number 6 on 21st of April 2009, the day of Ekadashi. Hare Krishna.
Prabhupada 5-6 saal paschat desh mein prachar karne ke baad apne kuch bhaktun ke sang Bharat mein aaye hain. और उनका दृष्टिकोण ये है कि भारत जो सनातन धर्म का केंद्र है, जहां संस्कृति सुलभ है, वैदिक संस्कृति, वहां निश्चित रूप से हमें अपनी संस्था का पीठ बनाना चाहिए. और ये हमारे पाश्चात शिष्य इनको समय समय के ऊपर यहां आकर संस्कृति और संस्कारों को अपने आगे बढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा. और तीन विशेष जगहें उन्होंने अपने मन में संकल्प किया था, वृंदावन कृष्ण भक्ति के भक्तों के लिए महान तीर्थ है, वहां उनको निश्चित आना चाहिए समय समय के ऊपर. मायापुर चैतन्य महाप्रभु का लीला क्षेत्र है, मां वृंदावन से अभिन्न है और पतितों को उद्धार के लिए विशेष रूप से बहुत उदार्य क्षेत्र है. और विश्व पूरे में प्रचार करने के लिए मुंबई को प्रभुपाद ने चुना था. तो इन तीन जगहों पर प्रभुपाद का निश्चित रूप से संकल्प था कि यहां केंद्र कुछ बनने चाहिए. जो लीला हम पढ़ रहे हैं, जहां अभी हम हैं, प्रभुपाद रह रहे थे बॉम्बे में और कुछ भक्तों के संग अमृतसर में. वेदांत कोई समिति थी, उसके निमंत्रण के ऊपर गए. देखो उस जमाने में 36 घंटे से 48 घंटे लगते थे ट्रेन में. और ट्रेन का वर्णन आता है कि डब्बा प्रभुपाद जी का इंजन के पास था और इंजन का धुआं और उसका काला पन सारा उस डब्बे के अंदर आता था. तो इतना लंबा सफर, जब अभी हम जहाज में जाना पसंद करते हैं, डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना लंबा सफर प्रचार के लिए करने में उनको कोई आपत्ति नहीं थी. और लिखा है कि 6 प्रोग्राम रोज करते थे, 10 दिन अमृतसर में रहे और 6 प्रोग्राम रोज करते थे. उनके शिष्य नहीं जा सकते थे सब जगह, कोई थक गया, कोई पीछे रह गया तो रहने दो, लेकिन प्रभुपाद को जिसने बुलाया उसके घर में जाना, उसके साथ बातचीत करने, उसको कृष्ण भावना के लिए प्रेरित करना और फिर वहां से उठ के दूसरे घर में जाना. और उस वक्त प्रभुपाद की आयु हो जाएगी 1896 और 1971 ईयर. और उनके शिष्य उस वक्त 25 साल से छोटे थे, लोग उनके साथ 6 प्रोग्राम में नहीं जा सकते थे. साइकिल रिक्शा पकड़ते, पीछे भागते, पहुंचते तब तक प्रभुपाद चले जाते थे. इसलिए कहते प्रभुपाद का प्रचार इमरजेंसी था, एक भी व्यक्ति मिल जाए शायद भगवान की प्रचार करने में सहायता करे, हमारे को तो बहुत जरूरत है. और वापस लौटते हुए एक अग्रवाल जी डब्बे के अंदर घुस के बोलते, प्रभुपाद प्रसाद रखा, प्रणाम किया, मैं आपसे बहुत प्रभावित है, आप यहां रुक जाइए. प्रभुपाद कह रहे मैं तो जा रहा हूं बॉम्बे, लेकिन भक्तों को बोला आप यहां रुको, उतर जाओ. ये प्रीचिंग की शैली, कोई आदमी चांस देता है तो प्रचार करना है. कैसी परिस्थिति कैसी है, कहां है, क्या करना है, प्रचार करना है. अब प्रभुपाद जी वापस बंबई पहुंचे हैं. राम शरणम का एक भक्त है अग्रवाल जी, उसके घर में सीताराम जी का मंदिर है चेंबूर में, प्रभुपाद के 15-20 भक्तों के संग प्रभुपाद को अपने घर में निमंत्रण दिया है, प्रभुपाद उनके घर में रह रहे। अब कोई मंदिर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, 3 कमरे दिए, 1 कमरे में प्रभुपाद रहते हैं, 2 कमरे में सारे भक्त रह रहे हैं। वो राम शरणन वाला है, उनके घर में रहे हैं, अग्रवाल जी उनसे रोज मिलते हैं, बात करते हैं। एक जगह में अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, क्या प्रभुपाद आप जब तक हैं तब तक तो ये भक्त भक्ति करते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये भक्ति छोड़ के वापस चले तो नहीं जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, दावे के साथ कहता हूं। बोला, आप मुझे संदेह है, आप दावे से कैसे कह सकते? प्रभुपाद कहते, जब तक ये जप करते रहेंगे इसका पतन नहीं हो सकता है, और मैंने इसको हरे कृष्णा मंत्र के जप में दीक्षित किया। तो एक सिद्धांत बहुत ठीक प्रभुपाद ने कहा, अगर हरे कृष्णा मंत्र जपते रहेंगे तो हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी सहायता करके हमारे को मुश्किल से बचाते रहेंगे। ये एक विशेष रूप से प्रभुपाद को इतना विश्वास था इस बात के ऊपर कि ये, क्योंकि जप में मैंने हरे कृष्ण मंत्र के जप में मैंने दीक्षित किया है और ये जपते रहेंगे तो कभी भी नहीं ये गिर सकते हैं। एक पहला सिद्धांत। और हमने प्राय एक ही चीज देखी है, जब भी स्लैक हमारा, जब भी हमारी कमजोरी जप में आती है तब माया हमारे ऊपर आक्रमण करती है। तो किसी भी परिस्थिति में जप को नहीं छोड़ना है, ये एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प लेना है। और यही प्रभुपाद का विश्वास था कि क्योंकि जप, हरे कृष्ण जप मैंने सिखाया और ये करते रहेंगे तो कभी भी ये अपने पद से चूक नहीं हो सकते। अब प्रभुपाद का दूसरी एक बहुत बड़ा दुरान ऋषि है जिसने प्रभुपाद को 64 में दान देकर भागवत की तीसरी किताब छापने में सहयोग किया था, मुरारजी, मिसेज मुरारजी, अपने सुमती मुरारजी ने, फिर मुफ्त का टिकट देकर पानी के जहाज में भेजा था। उनको जब मालूम पड़ा कि प्रभुपाद जी बॉम्बे में है तो उनको अपने घर में सत्संग के लिए बुलाया। और सुमती मनोज जी, मैं तो नहीं समझा था कि आप वापस जीवित वापस लौटेंगे, मुझे इसका विश्वास नहीं था, आप जा रहे थे, मैंने कहा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, अपने 70-71 साल का बुजुर्ग जा रहा है, क्या अमेरिका में कर पाएगा? लेकिन बहुत आश्चर्य है कि वापस आपको मैं जीवित देख रही हूं और सफल देख रही हूं। अपने घर में जुहू के ऊपर उनकी कोठी थी, तो उसमें सत्संग रखा, सत्संग के बाद प्रसाद भक्त ले रहे थे, वहां से आज हमको पढ़ना है, जहां भक्त प्रसाद ले रहे हैं मुरार जी के वहां, सुमति की वहां कथा समाप्त हुई है, और वहां प्रभुपाद जी से कुछ लोग मिले हैं। अब प्रभुपाद जी वहां क्या कर रहे हैं प्रचार? ब्रह्म संहिता से कुछ श्लोक पढ़े और बोला, सब हमारे पीछे पढ़ो, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजा। आधे घंटे तक प्रवचन किया और उस प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने, आधे घंटे तक बोलने के बाद उन्होंने सुमति मुरारजी और सन्मान्य अतिथियों और अधिकारियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वे डॉक्टर सी बाली और उनकी पत्नी प्रसिद्ध चलचित्र नृत्यिका वैजयंती माला से मिले। प्रभुपाद एक्ट्रेस वैजयंती माला से बात कर रहे, उनके पति के साथ वो लोग वहां आए थे। अभी तक भी ये परंपरा बॉम्बे में चल रही है, बॉम्बे के मंदिर सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों के केंद्र रहता है, वो आते रहते हैं समय समय के ऊपर। अब वो भक्त नहीं बनेंगे, ये नहीं है कि वो भक्त बनेंगे, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध है कि वो एक बार हरे कृष्ण मंदिर में आए तो भी मंदिर में आने से हमारा प्रचार बहुत बढ़ जाता है। प्रभुपाद को कोई भी मुफ्त की पब्लिसिटी का एक साधन मिलता है तो उसको यूज करना बहुत अच्छी बात है। वैसे 5 हिस्से अपने धन के करके भागवत कहती है कैसे खर्च हो, उसमें एक हिस्सा पूरा है पब्लिसिटी के लिए, एक हिस्सा धन का पब्लिसिटी के ऊपर खर्च करना चाहिए। जो धन का एक हिस्सा पब्लिसिटी के ऊपर खर्च करना चाहिए, ये एक पांच हिस्से जो धन के करने हैं ये भागवत में निर्णय है, एक हिस्सा विज्ञापन के लिए। और कुंभ मेले में भी प्रभुपाद इसलिए गए थे कि वहां सब साधु आते हैं, हमारा वहां होना इसलिए जरूरी है, वहां सारे लोगों को मालूम हो कि हमारा अस्तित्व, हम भी हैं, कि हमारा एक प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार की दृष्टि, उनका उद्देश्य प्रचार था कि वैसे अमृत का स्नान करेंगे उसमें हम अमर हो जाएं, ये उनका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था प्रचार करना। तो वैजयंती जब उनसे मिली तो वो अपना भाव प्रकट कर रही है। पहली बात तो वो कहती है, प्रभुपाद जी जो आप धर्म उपदेश करते हैं ये इतना सरल है कि हम जैसे लोग भी समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये है, उस वक्त जो भी यहां सन्यासी साधु प्रवचन करते थे वो इतना संस्कृत भाषा से और अलंकृत और इतना कठिन हुआ करता था कि साधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता था। एक बात ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, इससे एक बात हमको ये सीखने को मिलती है कि प्रभुपाद ने उन लोगों के स्तर के ऊपर बात की जिस स्तर के ऊपर वो लोग थे। अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं प्रवचन किया कि मैं कितना पंडित हूं। प्रवचन करने का अर्थ है कि सामने वाले को हम कितना दे सकते हैं और वो जो उसकी समझ में आए वो। इसलिए ये पहली कमेंट वैजयंती माला कर रही है कि आपका बोलना बहुत सरल है, सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है, महान दर्शन को भी बहुत आप सरलता से समझाते हैं। तो ये एक बहुत कमेंट हमको समझना चाहिए कि हमको शास्त्र कैसे लोगों को समझाना चाहिए, कौन हमारे आडियन है उससे कैसे बात करनी चाहिए जो उनको बात समझ में आए। अच्छा मैं बोलने वाला हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अच्छी तरह से लोग समझे ये महत्वपूर्ण है। और फिर आप पूरे विश्व के अंदर ये कैसे संदेश पहुंचाया ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूं। इतने सारे आपने केंद्र स्थापित किए हैं, उस वक्त 40 केंद्र स्थापित हो चुके थे पाश्चात्य देशों में, कैसे ये आप कर सके हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, अब वो अपना अनुभव बता रही है कि एक तो आपका दृढ़ संकल्प है और दूसरा लगन है, इसलिए ये आप कार्य कर पाए हैं। हम जानते हैं कि चेतना महाप्रभु की कृपा से ये सब हुआ है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति ये बात कहता है कि लगन और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं। तो प्रचार में हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और लगन होनी चाहिए तो सफलता मिलेगी, हाफ हार्टेड काम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा बंबई की सड़कों और साधु समाज में किए गए कीर्तन से उत्पन्न सार्वजनिक संसरी मर चुकी थी और उसके समाचार भी आने बंद हो गए थे। इसका अर्थ ये है, अभी तक नगर कीर्तन हुआ, पंडाल प्रोग्राम हुआ, कुछ भी लोगों में एक बार में रोज आता था, लेकिन अब आस्ते आस्ते वो बंद हो गया। तो एक चीज हमेशा के लिए स्थायी उसी रूप में नहीं रहती है, इसलिए समय समय के ऊपर उसको प्रचार करने के लिए नया ढंग सोचते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर समय कोई न कोई ऐसा साधन ढूंढना चाहिए जिससे लोग फिर वापस, इसको कभी कभी कहते थे नई पैकिंग में, पुराने माल को नई पैकिंग में देने का प्रयास करना चाहिए, कि लोग बेसिकली पैकिंग पसंद करते हैं, माल को देखते नहीं है। तो ये हमेशा प्रचारक को रोज सोचना चाहिए कि लोग किस चीज से आकर्षित हो सकते हैं, कैसे कृष्ण भक्ति करेंगे, वो साधन मुझे ढूंढना चाहिए। पांच साल की अमेरिका की उपलब्धियों से लोग बहुत प्रभावित थे, भारतीय लोग, उनको एक प्रमाणिक कृष्ण भावना अमृत का एक प्रमाणिक अधिकारी मानते थे। भारतीय जन प्रभुपाद को अद्वितीय मानते थे, ऐसी संस्कृति में जहां स्वामियों और पवित्र पुरुषों के साथ प्रायः सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उन्हें विशिष्ट समझा जाता है, इनसे मिलने वाले इन्हें अपने घर लाने और उसे पावन करने के लिए कहते रहते थे, तो यह से लगता है कि हर वक्त बड़ा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, लेकिन घरों में जाके प्रभुपाद का प्रोग्राम करना रेगुलर था। लोग घरों के लिए बुलाने आते थे तो प्रभुपाद निश्चित रूप से जाते थे और वहां जाके उनसे मिलके प्रचार करना, और एक ही बात कहते थे, इस्कान के आजीवन सदस्य बने और बंबई में एक विशाल केंद्र स्थापित करने में उनकी सहायता करें। वो जाने के बाद प्रचार के दो ही दृष्टिकोण उनके सामने रखते थे, भक्त बनो ये नहीं कहते थे, क्योंकि वो भक्त नहीं बन सकते थे। तो प्रभुपाद को इतनी बुद्धि एकदम होती थी कि ये क्या काम कर सकते हैं, मंदिर बनाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए, आजीवन सदस्य बने, हमारे पुस्तक लीजिए, भक्त हमारे पास हैं, आप ही उनको सहयोग कीजिए ताकि वो प्रचार करें। तो कौन भक्त बनेगा, कौन सहयोगी बनेगा, ये भी हमको निर्णय करना होना चाहिए, और दोनों की आवश्यकता हमको है। अब यही दो ही बातें कहते थे, आप सदस्य बनिए, और सदस्य क्यों बनिए, हम आपको सारे ग्रंथ देंगे और फिर आपकी सहायता से हम एक बहुत बड़ा अच्छा केंद्र स्थापित करेंगे। तो ये दृष्टिकोण उनके प्रचार का था। भारतीयों को धर्म उपदेश देते हुए प्रभुपाद प्रायः उनसे आग्रह करते थे कि वे अपनी विस्मृति प्रिया आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौटे। हमारी संस्कृति कृष्ण भावनामृत है, बंबई के नागरिकों के एक दल के सामने उन्होंने कहा, लेकिन हम उसे भूल रहे हैं और भौतिकता के बहुत अधिक लिप्त हो रहे हैं। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। अब भगवान ऋषभ देव का यहाँ प्रचार प्रभुपाद कर रहे हैं, आज ऋषभ देव की कथा आप पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बंबई वालों को देखा और बंबई वालों को देख के प्रभुपाद ने कहा आप अपने संस्कृति से विचलित हो रहे हैं। अब ये प्रचार करने की एक शैली है, ये भाषा हम प्रचार में बोलेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। हमने देखा अभी हम कहते हैं आप पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हो, आज्ञाकारी हो, इस बात को तो सब हाँ करेंगे ना, क्योंकि ये उनको प्रैक्टिकल लगता है कि उनके बच्चे अच्छे हों, उनके आज्ञाकारी हो, तो इसका मतलब उसको संस्कार मिलने चाहिए ना। हाँ मिलने चाहिए, तो उनके संस्कार के लिए आपको भगवद गीता भागवत पढ़नी चाहिए, तो ठीक है कि आपको संस्कार वापस मिलने चाहिए। तो जो चीज उनको हृदय से स्वीकार करेंगे वो उसको देंगे तो वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम छोड़ो सब फिर हमारे पास आओ तो फिर उस बात को स्वीकार करने में उनको बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रभुपाद जी उनको कहते आप अपनी संस्कृति को ले लो, आपकी संस्कृति कृष्ण भावना वा अमृत है, हम आपको संस्कृति लेने को कहते हैं, आपको मालूम नहीं तो हम बताते आपकी संस्कृति क्या है। तो पहले संस्कृति कहने का मतलब वो लोग समझते हैं अरे ये तो हमारे हित की बात कर रहे हैं, ये कुछ हमसे ले नहीं रहे, हमें कुछ दे रहे हैं जो हम भूल गए हैं, हमें याद दिला रहे हैं। भाई किसी आदमी को, किसी आदमी का मानो पैसा आपके पास रखा हो उसको भूल गया हो और आप जाके बोलो अरे भैया तुम्हारे पिताजी ने हमारे पास बहुत पैसा रखा था तुम अपना लेके जाओ, तो क्या वो कुछ होगा कि नाराज हो जाएगा आपसे। फिर ये बिल्कुल वो साधन है, वो हमारे बहुत बड़े भक्त थे, उसको मालूम नहीं था उसके पिताजी के कुछ पैसे पड़े थे पंजाब के किसी बैंक में, बाद में जाके ढूंढा पता लगा तो बहुत पैसे मिल गए कटे पड़े थे। तो ये तो ऐसे ही है कि आपकी संस्कृति है भाई, हम आपको बता रहे हैं बहुत बड़ी काम की चीज है, तो दोस्त गया है तो हमारी अपनी है, ये मुझे लेनी चाहिए ना, ये काम की है। तो उसी प्रकार से उसको प्रभावित करना है जो उसको क्लिक करे, जिसको वो स्वीकार करने को तैयार हो। तुम्हारी संस्कृति है, तुमको उसके ऊपर वापस लौटना चाहिए, ये कहकर प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुपाद अंत में बोले मैं याचना कर रहा हूं आई एम बेगिंग। पश्चिम में मेरे 42 मंदिर हैं और हर मंदिर में 50 से लेकर 100 तक शिष्य है, हजारों पुस्तकों का प्रकाशन होना है, कृपया इस आंदोलन में मेरी सहायता कीजिए। प्रोजेक्ट बता रहे हैं, पहले हमें कुछ दीजिए नहीं कह रहे, प्रोजेक्ट ये है हमारा, इतना सारा कार्य हो रहा है और ये कार्य करना है, इसमें आप हमारी सहायता कीजिए, कार्य के लिए सहायता कीजिए, हमको नहीं दीजिए, ये कार्य हो रहा है इसकी सहायता कीजिए। तो किसी के पास जाने से पहले प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं और उसका प्रमाण क्या है। 40 केंद्र है, हर एक केंद्र में 50 से 100 भक्त रहते हैं, इतने पुस्तक छपे हैं, ये पुस्तक छपने हैं, तो निश्चित रूप से एक चीज सामने दिखेगी तो दूसरा आदमी कहेगा कि ये हो रही है तो इसका सहायता करनी चाहिए, ये शब्द कहते हैं। और फिर राम शरणम के मनोहर लाल अग्रवाल प्रभुपाद के साथ प्राय घंटों बैठते थे, और वो जब उनके साथ बैठे हैं तो उन्होंने यही कहा, जप करने वाली बात आई उसके बाद अग्रवाल जी ने एक दिन कहा कि आप कब जाना चाहते हो, आप तो बहुत समय से रह रहे हैं और फिर एकदम कहते हैं मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप जहां से जाओ आप यहीं रहो, लेकिन फिर भी आपका प्लान क्या है आगे, ऐसे पूछ रहे हैं। तब प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं चेतन चरितमृत से, उसको देखो प्रचार करने का ढंग क्या है प्रभुपाद जी का। उसने कहा आप मेरे घर में रहो, लेकिन ये साथ में ये भी कह रहा था, प्रभुपाद देख रहे कि 20 भक्तों के साथ किसी के घर में रहना, भोजन रोज उसका प्रबंध उखर रहा है, भले धनी आदमी है लेकिन बहुत बड़ा भार है, बहुत मुश्किल काम है, और प्रभुपाद इसको देख रहे हैं। और आरंभ के दिन में संस्था इसी तरीके से प्रचार हुआ है, कभी एक के घर में रहते, कभी दूसरे के घर में रहते, कभी तीसरे के घर में रहते। अब प्रभुपाद उनको प्रचार कैसे कर रहे हैं कि वो हरिदास ठाकुर है ना, वो एक जगह गुफा में करते थे भजन, उसमें एक अजगर रहता था, लोग उनसे मिलने आते थे। तो एक दिन हरिदास ने कहा कि लोगों को बड़ा संकष्ट हो रहा है, अजगर यहां है, लोगों को भय लगता है। अजगर के मन में आया, परमात्मा ने उसके मन से कहा कि तुम यहां से चले जाओ। अजगर निकला गुफा के अंदर से, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और जा रहा था। और फिर प्रभुपाद हंसते हुए कहते ऐसे हम नहीं जाएंगे, अग्रवाल जी आप यहां से जाएंगे। अब कहने का जो शैली है वो बड़ी रोचक है, बहुत बड़ी बात कही लेकिन कहने की शैली दूसरी। तो उससे क्या अफेंड नहीं हुआ, लेकिन रोचक सा वातावरण बना और एक उम्र के हिसाब से उन्होंने उसमें आनंद लिया। तो बहुत कार्य करना है शेष, ये इसके बाद का अध्याय शुरू होगा। अभी तक जो हम कह रहे हैं, जो अध्याय हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है भारत नाचते सफेद हाथी। तो ये प्रचार में प्रभुपाद की शैली से हमको ये सीखना है कि किसी को ऑफेंड न करते हुए, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। किसी के घर में परसों जोधपुर में गए थे, ऊना मठ के वहां, तो प्रसाद लाया तो पेड़ा था ऊपर वर्क चढ़ा हुआ। अब उसको ये भी कह सकता था, भाई कह सकते थे हम कि घिया लाए हो, कौन इसको हाथ लगाएगा, ले जाओ यहां से, ये भी कह सकते। लेकिन ये भी एक कहना, उन्होंने देखा बड़े प्रसाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन माता जी तुम अपने हाथ से बनाते कितना अच्छा होता, और तुम्हारे हाथ का बनाया हो तुम बच्चों को खिलाती कैसे लगेगा, भगवान को अपने हाथ का खिलाना चाहिए ना, अगली बार हम आपके घर में आपके हाथ का खाना चाहेंगे। उसको ऑफेंड नहीं हुआ, और कहे नहीं नहीं अगली बार जरूर आप आइएगा, हम अपने हाथ का खिलाएंगे। अब कहनी वही बात है, लेकिन कैसे कहनी है हम नहीं लेंगे, क्या ये मुसीबत आप लेके आए हो, किसने पकाया, पता नहीं किसने पकाया, ये भी कहने का अंदाज है, लेकिन इससे उसका दिल बहुत टूट जाएगा। बेचारा बड़े प्रेम के साथ आपको घर में बुलाया है, एक घंटा बैठ के आपका सत्संग सुना है, और अंत में आप इस तरह से उसको कह के जाओ तो उसका हाल क्या होगा। तो कैसे कहना चाहिए ये बहुत बड़ी प्रभुपाद के इस शिक्षा से मिलेगा, कि बात तो वही कहनी है लेकिन दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है, शिक्षा देनी है। किसको कहने का अधिकार है, किसको कहने का अधिकार नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। और ये ऋषभदेव आपको समझाएगा हमको कि किसको अधिकार है कहने का। जो मंदिर में रह रहा है फुल टाइम मंदिर का भक्त है, मंदिर की सेवा में है, मंदिर उसको मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर आपका नियंत्रण करने का अधिकार है, आपका अधिकार है उसके ऊपर नियंत्रण करने का। लेकिन जो अपने घर में रह रहा है, वहां से भक्ति सीखने के लिए आना चाह रहा है, तो उसको जितना वो पूछे उतना ही सिखाने का आपको अधिकार है। आपकी ओर से उसके ऊपर कुछ थोपने का प्रयास करेंगे तो वो पीछे हटने का प्रयास करेगा। कल ही एक आदमी यहां क्लास के बाद मुझे पूछा कि मैं ये करना चाहता हूं, करूं कि नहीं करूं, एक पुस्तक का पूछने का पूछा। तो मैंने एकदम सोचा कि भाई मेरा अधिकार है इसको कुछ कहने का क्या, मैं तो इसको जानता नहीं हूं, पहली बार मुझसे मिल रहा है, अब इसको मैं मेरी मत राय दे दूं उससे अच्छा है मैं कहूं भाई तुम्हारे को जो अच्छा लगे, मैं ये जानता हूं और मैं ये करता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब कम से कम वो दोबारा बात तो करेगा मेरे से, उसको मतलब तुम गलत आदमी हो, ये करोगे नरक में जाओगे, फिर क्या करेगा। आपको अधिकार है कि नहीं ये कहने का, ये सोचना चाहिए ना भाई। गुरु को शिष्य के कहने का अधिकार है, पति को पत्नी का कहने का अधिकार है, बाप को बेटे का कहने का अधिकार है, लेकिन बाजार में किसी को जाते हुए कहने का हमको अधिकार तो नहीं है। उसको उतना ही कहने का अधिकार है जितना रिलेशन है, उसे ज्यादा नहीं कह सकते। तो ये प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ने से ये दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत में उसने प्रचार की क्या शैली अपनाई। और निश्चित रूप से वो शैली डिफरेंट है वेस्ट में प्रचार की शैली से, जो पाश्चात्य देश में प्रभुपाद ने प्रचार करने की शैली थी। और उसमें और एक फोटो बहुत बड़ा दिखता है, उसमें भजन योगी बैठा है, पुष्प मुनि जैन बैठा है, एक ही मंच के ऊपर सब बैठे हुए, उनके बीच में अपनी बात को कैसे रखनी है। प्रचार का उद्देश्य क्या है, कभी हमसे पूछते हैं, मेरे प्रचार का उद्देश्य क्या, कोई हमसे ये पूछता है। दो उद्देश्य है मेरे प्रचार के, हम सीधी बात ये कहते हैं, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो भक्त बनाएंगे, बैठेंगे शिक्षा देंगे, लेकिन एक जगह नहीं रहते घूमते हैं तो हमारा काम क्या है। हमारा काम है इस्कान की पॉजिटिव पब्लिसिटी करना। इस्कान हम एक संस्था है जिसको लोगों में सकारात्मक काम हम कर रहे हैं उनकी जागृति लोगों में आए कि हम ये संस्था बहुत बड़ा हित कर रही है भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को देश विदेशों के अंदर प्रचारित करने के लिए, ये बहुत बड़ी आपकी हित करने वाली है, ये इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बहुत लोगों को नेगेटिव विचार हमारे प्रति बहुत ज्यादा है। और दूसरा उद्देश्य प्रचार का, जो हम अपने इम्यूनाइजेशन, उसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं इम्यूनाइजेशन, अब सिद्धांत को ऐसे ठीक तरह लोगों के बीच में रखेंगे, दूसरा कभी कोई बोलेगा भी तो कहेंगे ये ठीक नहीं लग रहा है। यानी लोगों को एक गलत और सही में निर्णय करने के लिए उनको ऑप्शन दीजिए। एक ही जगह पे मैं हमारे दो साल पहले 5 दिन भगवत गीता का सत्संग किया था एक जगह पे जोधपुर में, कोई और भक्त था, वो 360 दिन तो हमारे सेवा करता है उधर, लेकिन अभी किसी और एक भक्त को लाके, वैष्णव है भक्त, उससे भागवत सुनना, तो मैं उधर गया एक घंटे आधे के लिए, कोई भागवत सुनना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को ये ना लगे कि भाई हम उसको ऑफेंड कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए गया। और लोग सारे उठ के बोला आप दोबारा कब कथा करेंगे। अब उससे ये क्या, उनको ये मालूम हो गया कि ये जो कह रहा है और ये जो गुरु ने कहा था इनमें बहुत अंतर है। लोगों को ये पता लगता है कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो उसमें से 1000 आदमी सुनने वाले होंगे, उसमें से आपको 10 आदमी मिले तो बहुत है भक्त बनने के लिए, लेकिन 900 से अधिक आदमी कम से कम नेगेटिव तो न लेके जाए ना ओपिनियन। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, बहुत नैरो नहीं है, बहुत वाइड विजन है। और एक उसने बहुत एक अच्छी बात लिखी, केवल ऐसे भी नहीं है कि उन्होंने अपनी बात की है प्रभुपाद ने, उन्होंने सब समय सब जगह सब लोगों के उनके स्तर के अनुसार बात की। तो ये प्रचार की शैली प्रभुपाद के भारत की देखना चाहिए। मैं उस दिन बहुत पुराने वो लिखी नहीं ऐसे लिख रहा था एक भक्त की, बोला प्रभुपाद को कुछ लोग बुलाने आए अपने मंदिर के लिए, देवी का मंदिर था। प्रभुपाद ने हमको कहा आप जैसे मैं प्रणाम करूं ऐसे करना, जैसे मैं करूं आप उसको उधर देखते रहना। और उधर गए प्रभुपाद ने वो राइट साइड से प्रणाम किया, हमने राइट साइड से किया, फिर प्रभुपाद ने ऐसे लोगों से बात की, फिर बैठे, फिर प्रचार किया, फिर वहां से चले आए। तो कहां जाना है कैसे करना है, प्रभुपाद हर जगह गए हैं प्रचार किया है, लेकिन उस फिर उन लोग तभी लोग अभी उनको याद करते हैं कि कैसे उन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन लाए। भाषण से ज्यादा आचरण से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। और आचरण का मतलब है कैसे हम डील करते हैं लोगों से, हमारा लोगों से व्यवहार कैसे। अब ऐसे भागवत में प्रवेश करते हैं, थोड़ा समय जो बचा है। पांचवा स्कंद भागवत का हमारे विषय है आज का, और पांचवें स्कंद में चौथे स्कंद में मनु और सतरूपा, ब्रह्मा जी ने अपने से एक स्त्री पुरुष बनाया, प्रकृति जो मन से बनाए आगे नहीं बढ़े तो अपने ही शरीर से दो भाग बनाए, तीन पुत्रियां और दो पुत्र हुए। एक पुत्र का वर्णन तो चौथे स्कंद में आ गया उत्तानपाद का, अब दूसरे पुत्र के वंश की बात चल रही है प्रियव्रत की। तो महाराज प्रियव्रत ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की, सूर्य के साथ अपने रथ को चला के सूर्य अस्त हो जाए तो प्रकाश किया, रथ के पहियों से देश के ऊपर विजय प्राप्त की, सात समुद्र बनाए। तो अपने बल से और कैसे किया ये, अपने गुरु नारद की शिक्षा के अनुसार। फिर ब्रह्मा जी के और इंद्र के कहने के ऊपर राज किया, राज करने के बाद भी अंतिम श्लोक में कहते हैं मेरे गुरु की शिक्षा मुझे याद है, संसार के अंदर जो मैंने भोग किया राज किया वो तो किया, लेकिन अब वापस मुझे भगवान का भजन करना है, अपने बेटे को अग्निधर को राज देके और भजन करने चले गए। तो तीनों स्टेज, ब्रह्मचारी स्टेज से गुजरे, गृहस्थ में राज किया, फिर वापस व्रक्त हो गए। तो गुरु की कृपा से ये सब शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। अग्निधर महाराज राज तो बड़ा सुंदर किया, लेकिन थोड़ा सा अप्सरा के संग ब्रह्मा जी ने एक भेजी थी उसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन उसके जाने के बाद उनमें आसक्ति ज्यादा रही, उससे पुत्र जो उत्पन्न हुए उसमें से एक महान पुत्र हुआ नाभि, और फिर आगे नाभि की कथा चलती है। वो तो पितृलोक चले गए अग्निधर जी। अभी महाराज नाभि की विशेषता क्या है इस श्लोक में वो बताते हैं कि नाभि कैसा महान था, और ये कुछ आचार्यों ने कुछ ऋषियों ने नाभि की महानता के दो श्लोक कहे हैं, उसमें से ये श्लोक एक है। अब नाभि की महानता क्या है आइए पढ़ते हैं। यस्याह पांडवय श्लोकाव उदाहरन्ति, को नो तत्कर्म राज ऋषे, नाभेर अन्व आचरेत पुमान, अपत्यताम अगादयस्य हरिशुधेन कर्मणा। यस्यः पांडवै श्लोकाव उदाहरणी, ये श्लोक और श्लोकाव जो शब्द है ये द्विवचन है, दो वचन में दो श्लोक, श्लोकाव श्लोकाव दो श्लोक में। पांडवय का अर्थ क्या हो गया, कौन से है तो पांडवय, हे परीक्षक, हे परीक्षक दो श्लोकों में दुनिया को उदाहरण देने के लिए नाभि का चरित्र लिखा है। तो एक क्या श्लोक में एक क्या बात कही है, कोनू तत कर्म राज ऋषेर नाभिर अनु आचरे तपमान। कौन इंसान है जो नाभि जैसे चरित्र का को दिखा सकता है दुनिया के? कौन है ऐसा जो नाभि जैसा राजऋषि नाभि ने जगह चरित्र? बोला क्या विषय थी उसके चरित्र में? बोला उसकी विशेष थी आपत्यताम अगाध यस्य हरि शुद्ध कर्मणा। अपने शुद्ध कर्मों से भगवान को जिसने अपने पुत्र अपना पुत्र बना लिया था, ये नाभि की विशेषता थी। नाभि की क्या विशेषता थी? उसने अपने शुद्ध कर्मों से भगवान को अपना बेटा बना लिया, भगवान उसके बेटे बने ऋषभदेव, ये उसकी महानता थी। नाभि की दूसरी महानता इसकी कल वाले श्लोक में आएगा। वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था और ब्राह्मणों का इतना भक्त था कि नाभि के यज्ञ में ब्राह्मणों ने भगवान को आह्वान करके बुलाया और भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला हमारे शिष्य को आप जैसा पुत्र चाहिए। ब्राह्मणों ने नाभि के लिए भगवान को पुत्र बनने के लिए बाध्य किया और भगवान ने सुकृति दी। तो नाभि की मान्यता यह है कि भगवान ने उनका पुत्र तो स्वीकार किया शुद्ध कर्मणा, उनके शुद्ध कर्म के द्वारा। और प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखते हैं इसका अर्थ श्लोक का, समय के अभाव से हम आवृत्ति न करके आगे चलते हैं। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशुगान में प्राचीन मुनियों ने दो श्लोक रचे हैं, ये पहली लाइन का अर्थ है। उनमें से एक ये है, महाराज नाभि जैसा सिद्ध अन्य कौन प्राप्त, सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है? उनके कर्मों को कौन प्राप्त कर सकता है? उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। इस श्लोक में शुद्ध कर्मणा शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो वो गुणों से दूषित हो जाता है। गुणों का मतलब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। भगवत गीता में इसका व्याख्या, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम बंधन। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किया जाता है, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के लिए नहीं किया जाता है, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। तो ये जो शब्द है, क्या शब्द है यह? शुद्ध कर्म। शुद्ध कर्म का मतलब तीनों गुणों से रहित कर्म, वो कर्म जो भगवान के लिए किया जाए जिसमें गुणों का जरा भी लेस मात्र न लगे, वो कर्म शुद्ध कर्म कहलाता है। व्याख्या भागवत में कही है के रूप में की गई है, जो कर्म भगवान के प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वे ही शुद्ध हैं और वे ही गुणों के, वही गुणों से कुलुषित नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि जो भी, चाहे पुस्तकालय में पुस्तक वितरण करे, चाहे सफाई करे, झाड़ू करे, लगाए मंदिर में, लेकिन इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। जबकि यही काम करने में पांच दोष घर में लगते हैं। घर में झाड़ू निकालने से तक बहुत से जीव मरते हैं, उसका दोष लगता है, उसको दोष बोलते हैं। पांच सुनू बोलते हैं, पांच दोष होते हैं। रोज पांच हमारे हाथों से घर के अंदर दोष होते हैं। झाड़ू लगाते हुए पशु मरते हैं, अग्नि जलाते हुए मरते हैं, पानी भरते हुए मरते हैं, अन्न कूटते हुए मरते हैं, अन्न को साफ करते हुए मरते हैं। इसलिए हर एक को पांच यज्ञ करने का आवश्यकता है, जो भी गृहस्थी अपने घर में रह रहा है। लेकिन जो काम भगवान के लिए किया जाता है वो इन गुणों से मुक्त है, इन सब बंधनों से मुक्त है, वो इन बंधनों से मुक्त है। तो काम तो करना ही है, लेकिन एक काम अपने लिए करना है तो उसमें गुण जरूर लगेंगे और तमोगुण रजोगुण सतोगुण के प्रभाव में वो काम होंगे तो उनका फल हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान है ही स्वयं गुणातीत, इसलिए उनके किए जाने वाले सारे कर्म अपने आप गुणातीत हो जाते हैं। इसलिए भक्त जो भी कार्य करता है वो गुणों से रहित होता है। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं निस्त्रगुण भव अर्जुन। अर्जुन तीनों गुणों से रहित होके युद्ध तो कर। वैसे युद्ध रजोगुण का कार्य है, युद्ध क्रोध के अंतर्गत रजोगुण का कार्य है, ये रजोगुण है। लेकिन अब तुम इस युद्ध को तीनों गुणों से ऊपर होके कर हुए तो इसमें तुम्हारे को कुछ दोष नहीं लगेगा। ये विशेष भगवान काम क्या ले रहे हैं, युद्ध का घोर कर्म ले रहे हैं, लेकिन गुणों से मुक्त होके ये कार्य करो। निस्त्र गुण भाव अर्जुन, ये गुणों के अंतर्गत नहीं करो। क्योंकि एक जगह पे तो ऐसे भी लिखा है कि क्षत्रिय जैसे ब्राह्मण यज्ञ करता है, पशु की बलि देता है, तो वो बलि जैसे यज्ञ क्षत्रिय जब युद्ध करता है, किसी को मारता है, तो वो भी बलि के समान है, लेकिन वो भी तीनों गुणों के अंतर्गत आ गया ना, तो स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा ना। लेकिन तुम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मत करो, तुम तीनों गुणों से ऊपर होके ये कार्य करो। ये किस जगह भगवान कह रहे, जहां स्वर्ग की बातों का वर्णन हो रहा है वहां कह रहे। वेदों में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं आपको अर्जुन के तीनों गुणों से ऊपर होके कर्म करो। यहां तो भगवान ने कह दिया तीनों गुणों से ऊपर होके कर्म करो, लेकिन अर्जुन ने पूछा नहीं कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे हो जाऊं। अभी अर्जुन उसके लिए तैयार नहीं था। अर्जुन ने यह प्रश्न जाके पूछा है 14वें अध्याय में अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे हूं, जरा रास्ता बताओ भगवान। दूसरे अध्याय में नहीं है ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, लेकिन दूसरे में अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा। 14वें अध्याय में यही प्रश्न दोबारा किया है कि त्रिण गुणान अतीत कैसे होगा, उसके लक्षण कैसे है, भगवान अतीत होने का साधन बताया। क्या बताया? अविविचारेण भक्ति योगेन सेवया स गुणान समतई तैतान ब्रह्म भूया या कल्पते। जो अविविचारणी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वो तीनों गुणों से मुक्त होके ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है, ब्रह्म भूया या कल्पते। तीनों गुणों से अतीत कौन हो सकता है? भगवान के लिए कार्य करने वाला। भक्ति का कार्य तीनों गुणों से मुक्त है, इसलिए घर के अंदर भोजन भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो गए, नहीं तो वही भोजन अपने लिए केवल पका के खाते हैं। स्तेन एव सह, गीता क्या कहती, पाप ही केवल खाते हैं। कार्य वही है, खाना वही है, पेट भरना वही है, लेकिन एक में बंधन है और एक में बंधन मुक्ति है। इसलिए बुद्धिमान वो है जो अपने सारे कार्य शुद्ध कर्मणा, अपने कर्मों को शुद्ध करे। किससे शुद्ध करे? तीनों गुणों से शुद्ध करे। और तीनों गुणों से शुद्ध करने के लिए भगवान से अपना संबंध बनाए रखना जरूरी है। भगवत गीता तीन गुणों का वर्णन करती है, लेकिन भागवत में उद्धव गीता में भगवान में चौथा एक तीनों गुणों से ऊपर लक्षण भी बताए, निस्त्रगुण लक्षण भी बताए। सतोगुण ये, त्रजोगुण ये, तमोगुण ये, और तीनों गुणों से अतीत है वो ये, उसमें चौथा स्तर बताया। और वहां विशेष रूप से कहते हैं मम निकेतन निर्गुण, मेरा घर मेरा मंदिर तीनों गुणों से परे है, इसलिए मंदिर में आके रहो अथवा घर में मंदिर बनाना, दोनों स्थिति में आप तीनों गुणों से मुक्त रहेंगे। इसलिए प्रायः भक्तों को परामर्श किया जाता है, उनको विनती की जाती है कि अपने घर में भगवान को स्थापित करो। भगवान को घर में स्थापित करके हर कार्य भगवान के साथ संबंधित करके करना शुद्ध कर्मणा हो जाएगा। अब वही भगवान यहां नाभि के घर में ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए थे। अभी भी बहुत से वैष्णव हैं जो अपने घर में भगवान गोपाल को रखते हैं और पुत्र के समान उसकी पूजा करते हैं, तो उसका कम काम शुद्ध हो जाएगा तो भगवान घर में आके बैठेंगे, और भगवान घर में बैठेंगे तो आपको सेवा का अवसर देंगे। वैसे सीधा डायरेक्ट सेवा का अवसर भगवान देते नहीं है हर एक को, तो ठाकुर जी घर में भगवान को घर में विराजमान करना हमारे सारे कर्म शुद्ध कर्मणा हो जाते हैं। इसलिए नित्य नियम से अगर मंदिर में आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में मंदिर को स्थापित निश्चित रूप। और कलयुग में अपने घर में मंदिर स्थापित करके और भगवान को भोग लगे रोज, और जब भोग लगे तब परिवार के लोग प्रसाद की प्रतीक्षा में बैठे, तब भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। ये यज्ञ उनके सारे दोषों को समाप्त करेगा, सारे दोष नाश हो जाएंगे। दो टाइम सभी भोजन निश्चित रूप से अपने घर में खाते हैं, दो टाइम भगवान को भोग लगे और दो टाइम भोजन से पहले कीर्तन हो, ये नियम अगर बन जाए सब घरों में, बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा है, लेकिन कीर्तन हो जाए तो ये यज्ञ है। और ये यज्ञ शुद्ध कर्मणा में आता है। तो प्रभुपाल जी कहते शुद्ध कर्मणा का अर्थ है कि इनसे बचना। इंद्रियों की तुष्टि के लिए संपन्न समस्त कर्म दूषित होते हैं, किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहां तक कि यज्ञ के समय भी दिव्य कर्म ही किया, यज्ञ के समय भी दिव्य कर्म ही किया था। इसका अर्थ क्या? यज्ञ के समय ही दिव्य कर्म किया था, यज्ञ किया, भगवान आए, भगवान से कुछ और भी तो मांग सकते थे, और मांग लिया होता संसार का सुख अथवा स्वर्ग आदि लोग तो दिव्य कार्य नहीं होता, भगवान को ही मांग लिया। यज्ञ के अंदर भी यज्ञ के फल रूप कुछ और न मांगकर भगवान को ही मांग लिया। तो इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ का फल मांगते हैं, यज्ञ पुरुष को नहीं मांगते, यज्ञ पुरुष से कुछ मांगते हैं। लेकिन नाभि की विशेषता यह थी कि यज्ञ में भगवान का आवाहन हुआ, भगवान पधारे, तो नाभि ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन नाभि के पंडितों प्रहतों ने नाभि के हित के लिए भगवान को नाभि के पुत्र बनने के लिए प्रार्थना की। वहां भी नाभि ने कुछ मांगा नहीं, ब्राह्मणों ने यह प्रार्थना की, इसलिए दूसरे श्लोकों में नाभि ब्राह्मणों का महोत् सम्मान करता था, ये दूसरा उसकी मानता है, इतना और किसी ने सम्मान, इतना सम्मान किया कि ब्राह्मणों ने अपने यजमान के लिए भगवान को बेटा बनाने के लिए बाध्य किया। तो यज्ञ करते हुए भी नाभि ने कोई दूषित कर्म नहीं किया। इसका अर्थ ये, बहुत सारे यज्ञ रोज होते हैं, 100 कुंड का योग, 108 कुंड का यज्ञ, 1000 कुंड का यज्ञ, लेकिन उसमें बैठते काय के लिए लोग? दुनिया की कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं बैठते। तो भगवान संबंधित कार्य, और नाभि के पास कोई कमी नहीं थी, नाभि को कितने पुत्र हुए, उनमें से एक ऋषभ देव है, और भी संतान है नाभि की, आया है नाभि के पुत्रों का नाम नहीं आया, एक ही हुआ, नहीं था ही नहीं पहले, एक ही आया, लेकिन ऋषभ देव ने फिर 100 पुत्र, उसके पास 100 पुत्रों का, 100 पुत्रों में 9 को तो सन्यासी बना दिया, 9 योगेंद्र, भरत का राजा बना दिया, 9 को, बाकी 9 को 9 खंड दे दिए, बाकी सब बहुत ब्राह्मण तो के पर समान थे। तो ये नाभि की विशेषता ये है कि भगवान को मांग लिया। तो ये एक और भी सिद्धांत जीवन में उतार लीजिए कि भगवान से मांगना और भगवान को मांगने में बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में सब भगवान से मांगते हैं लेकिन बुद्धिमान भगवान को मांगता है। अगर हम भगवत गीता के स्टूडेंट हैं तो हमको अर्जुन से यह सीखना चाहिए, उसने भगवान से नहीं मांगी सेना, भगवान कृष्ण को ही मांग लिया और उसकी जीवन सफल हो गया। तो हमें कृष्ण अर्जुन की शिक्षा के अनुसार, अब इस वक्त भगवत गीता हम हमारी परंपरा अर्जुन से चल रही है और अर्जुन की परंपरा के अनुसार हमको भगवान को मांगना चाहिए। भगवान से दुर्योधन ने मांगा था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो भगवान को मांगना ये नाभि की विशेषता है, अर्जुन की ये विशेषता है। तो इस दुनिया में भगवान को मांगने वाला फिर दोबारा किसी के पास हाथ नहीं टांगता, भगवान से मांगने वाले को फिर मांगना पड़ता है। राम राज्य में ये कहते हैं, भगवान राम की विशेषता ये बताते हैं कि एक बार किसी ने मांगा तो फिर उसको कभी जिंदगी में और मांगना नहीं पड़ता था, उसको इतना देते थे कभी फिर उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और यहां ऋषभ देव के राज की ऐसा वर्णन आएगा कि कोई कुछ चीज मांगता नहीं था, सब चीजें सबके पास पर्याप्त मात्रा में हुआ करती थी, किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ विशेष चाहिए नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से उपलब्ध है। ठीक इसी को अगर देखें तो मंदिर के अंदर भक्तों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, सबको सुबह अपना प्रसाद, शाम को अपना प्रसाद मिलता है, कपड़ा अपने समय पे मिलता है, कुछ मांगने की जरूरत भक्तों को पड़ती ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? भगवान को ही मांग लिया जीवन में, तो और काय के लिए कुछ मांगने की जरूरत पड़े? नहीं पड़ी, भक्तों को कुछ जरूरत नहीं है मांगने की, कुछ मांग क्या क्या करेंगे मांग के? भगवान के पास ही आ गए तो फिर उनकी कोई समस्या रही नहीं। हमें आश्चर्य लगा, इस बार मैं घर में बैठा था, किसी ने मुझे कहा चीनी 30 रुपया किलो हो गई है, मूंग की दाल 50 रुपया किलो। मैंने कहा मेरे को 10-15 साल से मुझे तो पता नहीं है भाव क्या है चीजों का। मैंने कहा मुझे पता नहीं, सच बोलता हूँ कि चीजों का भाव क्या है। तो मुझे बोला फिर आप खाते क्या हैं? तो ठीक ठाक, मेरे को खा रहा हूं लेकिन भाव का पता नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है। और ये कोई किताब की लिखी हुई बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव से देख लो, भगवान के ऊपर निर्भर होकर देख लो, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप सब हो जाता है, समय से पहले हो जाता है। होता सबके लिए भी है लेकिन भगत के लिए विशेष होता है, मिलता सबको है लेकिन उस बेचारे को गिड़गिड़ाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, गदा मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है भक्त को। लेकिन भक्त को जो करना पड़ता है वो दूसरे कर नहीं पाते, उसको 4 बजे उठना पड़ता है भक्त को, भगवान के लिए 2 घंटे बैठ के जप करना पड़ता है। भक्त की विशेषता ये है कि वो भगवान को निकट हो जाता है तो फिर उसकी कोई कमी नहीं रह जाती, उसकी त्रुटियां अपने आप। तो इसलिए कैसे हम भगवान के निकट हो जाएं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जहां हम रहें वहां हम भगवान के निकट कैसे रहें, ये एक कला किसी को आ जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। और हर समय भगवान के निकट कैसे रहेंगे? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया हुआ है, इसलिए जिस समय आप भगवान को पुकारते हैं भगवान आपकी जीभा के ऊपर आके खड़े हो जाते। तो केवल भगवान को पुकारने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा जागृत करो कि हम भगवान को हर समय पुकारते रहें। ये एक मन में इच्छा हो कि हमें भगवान की विस्मृति न हो, ये इच्छा अच्छी इच्छा है। बाकी इस अलग जितनी भी इच्छाएं वो इच्छाएं हमको बांधेंगी, ये इच्छा हमारे को मुक्त कराएगी। भगवान की विस्मृति नहीं हो, कैसे नहीं हो सकती है? अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास से याद नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास हमको करेंगे तो हमको याद रहेगा, दूसरा करेगा तो दूसरे को याद रहेगा। फल मिल सकता है आपको लेकिन अभ्यास आपने, जैसे बहुत से लोग हैं ब्राह्मण को बुला के जप कराते हैं, 1.25 लाख का जप हमारे घर में करना, 1.25 लाख का जप, अभ्यास तो ब्राह्मण ने किया ना, फल आपको मिलेगा लेकिन भगवान उसको याद रहेगा। तो उसने भगवान उसको याद रहेगा, फल आपको मिलेगा, आपको स्वयं को जप करना पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और जो अभ्यास नहीं कर सकता है वो इस दुनिया में और कुछ भी नहीं कर सकता। वो समझ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन वो सब समय के साथ समाप्त हो जाएगा। भागवत के अंदर 11वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद में विशेष रूप से सब राजाओं का वर्णन है। ये बड़े राजा हुए, ये बताने का मतलब क्या था परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी का? कोई भी नहीं इनमें से रहा, सब चले गए। तो आप भी जा रहे तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है, एक भी नहीं रहा, बताओ कहां है सारे? लेकिन उसके जो कार्य अच्छे हैं वो आज भी हैं, जो भगवत भक्त हैं उनका नाम आज भी दुनिया में गाया जा रहा है। राज नहीं रहेगा लेकिन भक्ति हुई भक्ति तुम्हारी निश्चित रूप से रह जाएगी। तो जो ये तपस्या नहीं करते भगवत नाम के अभ्यास की, उसको सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो काय के लिए कर रहा है? ये ले जा सकते हो और कुछ नहीं ले जा सकते, ये विशेषता है दोनों में। बाकी जितना प्रयास करके जो भी इकट्ठा कर रहे हो वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये अगर आप प्रयास करोगे तो ये आपके साथ जाने वाली वस्तु है और कोई वस्तु जाने वाली नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या जाने वाली है ये समझ लो। यहां ये नाभि ने समझ लिया कि भगवान मेरे को मिल गया, तो फिर पीछे पुत्र तर्पण करके मेरे को बाद में करेंगे तृपण मेरे पुत्र, तब मेरा उद्धार होगा ना। ये तो भगवान मेरा पुत्र हुआ, अब कुछ तृपण की जरूरत नहीं है, अब कोई तृपण की जरूरत नहीं, समस्या समाधान होगी। समझे तो वो अभ्यास निश्चित रूप से हर प्राणी को करना चाहिए, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा धर्म है। जो नहीं कर सकता है उसके ऊपर दया करो, उससे घृणा मत करो, उससे द्वेष मत करो, उसके ऊपर दया करो। भगवान इसके हृदय में आप ऐसी प्रेरणा दीजिए कि आपको याद करके अपना जन्म सफल करे। भगवान को उसके लिए प्रार्थना करो जो कर रहा है, उससे मित्रता करके उसका सहयोग करो कि वो आगे बढ़े। जो नहीं कर पाता है उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान सभी आपकी भक्ति करें, ऐसी कृपा कीजिए। ये कहना भी अच्छी बात है। तो नाभि सत्कर्म था, सत्कर्म से पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त हुआ। हम जीवन में सत्कर्म करेंगे, उस करने के लिए हमको अपने घर में भगवान को बिठाना पड़ेगा, और भगवान को घर में बिठाने के लिए भगवान का नाम जपना ही कलयुग में पर्याप्त है। केवल अगर भगवान का नाम आप प्रतिदिन जपते हैं तो भगवान आपके संग में है, तो भी आपका सारा काम सफल हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से नाभि के इस चरित्र से हम कैसे हर समय भगवान को अपने जीवन में बनाए रखें, ये एक सीखना चाहिए, जिससे हमारा हर कर्म सत्कर्म हो जाए, नहीं तो दुष्कर्म हो जाएगा, और दुष्कर्म हो जाएगा तो वो भोगना पड़ेगा। ये ऐसा फिलॉसफी है, भगवान की भक्ति करोगे तो आप सब दुष्कर्मों से मुक्त हो, और भक्ति नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली दुष्कर्म ही कर रहे, उसको करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं भगवान के चरणों में हो तो सुरक्षित हो, और भगवान के चरण छोड़ोगे तो माया की गोद में अपने आप गिर जाओगे, आपको उसके पास जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। दूसरे काम के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे प्रहलाद की भाषा में कि दुख कोई नहीं मांगता है फिर भी सबको दुख आता है अपने आप, ऐसे माया की गोद में गिरने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप गिर जाएगा। लेकिन जो भगवान को चपका रहेगा वो गिरने से बच जाएगा, बाकी तो गिरे हुए हैं। किसी ने कहा सत्संग सुनते हैं, मंदिर में आते हैं तो उत्साह होता है, जप करें ये करें, लेकिन वापस जाते हैं तो सब बातें भूल जाते हैं, उधर ही खड़े होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया सारी जैसे नदी का पानी नीचे की तरफ बहता है, ऐसे सारी दुनिया गिरती हुई जा रही है। वो तो सबका जो जाना है वो तो इंद्रिय तृप्ति की तरह जाना है, भोग की तरफ जाना है। अब बताइए शहर के अंदर जितने एडवर्टाइजमेंट लगे हुए उसमें से कितने एडवर्टाइजमेंट है कि आइए ये मंदिर है या भगवान का प्रसाद खाइए दर्शन कीजिए, कितने है? बाकी एडवर्टाइज कितने है सर? सिगरेट की, शराब की, नाचने की, गाने की, गाड़ियों की, मोटरों की कितनी एडवर्टाइज है? कंपेयर करो कितनी एडवर्टाइज है जो भगवान की तरफ ले जाने की आपके पास है, कितना विज्ञापन रोड के ऊपर है। तो इसका मतलब सभी लोग नीचे तो पानी में जहां नदी का बहाव है उधर तो मरा हुआ गधा भी बह जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसकी उल्टी सिमत चलना बहुत मुश्किल है। जो उल्टी सिमत में जाएगा वो उद्गम स्थान के ऊपर पहुंचेगा जहां से आ रही है, और वहां जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इसलिए थक जाएंगे, और थक जाएंगे इसलिए ये मंदिर बनाए हैं कि जब थक जाओ थोड़ी देर के लिए यहां भक्तों के संग में आ जाओ। ये एंकर हैं आपके लिए, ये वो जगह है जहां थोड़ी देर कुछ को पकड़ के आप सांस ले सकते हैं, आपको दोबारा शक्ति मिल जाएगी, फिर आगे वहां से बढ़ने के लिए प्रयास करोगे। तो हर भक्त को अपने जीवन में एक अच्छा सा एंकर रखना चाहिए। एंकर कहते हैं अंग्रेजी में लंगर, जिसको जिसमें जहाज को बांधते हैं, नहीं तो बह जाएगा। भक्ति में हमारे को भक्तों का संग लंगर का काम करता है। बहुत मुश्किल है उल्टे सिमत में चलना, बहुत मुश्किल है। लेकिन थकने के समय भक्तों का संग होगा तो थोड़ा सुस्ता लेंगे और फिर साथी मिलेगा तो आगे फिर तैरने का प्रयास करेंगे। ये आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है भक्तों का संग, नहीं तो नीचे जाने तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं। कोई कहे कि भैया मैं गिर रहा हूं तो भी तुम्हारे कोई इसमें तो कुछ नहीं, सभी जा रहे हैं इसमें, तुम जा रहे हो कौन सी बड़ी बात है। बच जाओगे तो मुझे बताओ, तुम बच गए तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं नहीं बह रहा हूं कोई कहे तो ये आश्चर्य की बात है। गिर गया इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, सभी गिरे हुए। बच जाने वाला महान है और बच हो सकता है सिर्फ जो भगवान के चरणों से अपने आप को जोड़ रखता है। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरोय भव सिंधु रे। और नाभी का बेटा ऋषभ देव एक अध्याय के बाद शिक्षा देगा, वो शिक्षा सब सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग सबके लिए, और वो अपने बेटों को शिक्षा दे रहा है और ब्राह्मणों के समाज में सारे पंचायत के बीच में दे रहा है। और एक ही शब्द शिक्षा कह रहा, तपो दिव्यम, बेटा तपस्या करो, तपस्या दिव्य करो, इसमें जो तुम्हें सुख मिलेगा वो अनंतरम मिलेगा, बाकी तुच्छ सुख है, क्षणक सुख है, सदा रहने वाले नहीं है। ये एक शिक्षा ऋषभ देव की जो है तपस्या, ब्रह्मा ने तपस्या की तब ये जगत की उत्पत्ति की। केवल दो शब्द तप ही सुने, तपस्या के बगैर कोई चीज दुनिया में प्राप्त नहीं होती। तपस्या सभी कर रहे हैं, आप भी तपस्या कर रहे हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं दुकान पर, रात को 10 बजे लौट के आते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ रही है, वो भी तपस्या ही कर रहे हैं, तभी कुछ मिल रहा है खाने पीने का 2 टाइम का। लेकिन नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा आना। लेकिन एक ऐसी तपस्या भी है जो अगर थोड़ी करने का अभ्यास इस जन्म में कर लेंगे तो सदा के लिए आनंद से सौख्यम अनंतम, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा ऋषभ देव कह रहा है जो नाभि का पुत्र है। ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, अपने पुत्र को मैं सब गुण संपन्न देखा। जो ऋषभ देव के गुण यहां वर्णन किए हैं वो दशरथ जी और उसके सारे राज राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसे हैं। शुद्ध कर्मणा, इसमें प्रभुपाद ने विशेष रूप से शुद्ध कर्मणा के ऊपर जोर दिया है। शुद्ध कर्म, हमारे जीवन में शुद्ध कर्म कैसे हो, ये शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए इस श्लोक से। शुद्ध कर्म मतलब तीनों गुणों से लिप्त न हो वो कर्म, और तीनों गुणों से लिप्त तब हो सकते हैं जब कर्म भगवान के लिए किए जाए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक बंधना, भगवान के लिए कर्म नहीं किया जाए तो बंधन का कारण बनेगा निश्चित रूप से। सतोगुण भी बंधन का कारण है, सोने की जंजीर है। रजोगुण भी बंधन का कारण है, चांदी की जंजीर है। और तमोगुण लोहे की जंजीर है, लेकिन तीनों बंधन का कारण है। तीनों से ऊपर जाने से बंधन से मुक्त होंगे। शुद्ध कर्म करना कैसे किया जाए ये शिक्षा यहां से हमको मिली। इस बात को यहां समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या टीका है, किसी को कुछ कहना है, 5वें स्कंद 26 अध्याय है, आखिर में नरकों का वर्णन है। वो सिर्फ इसलिए बताया गया है कि यहां से बचने का प्रयास करना। बहुत हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, 5 प्रकार में एक प्रकार विज्ञापन है, एक प्रकार अपने निर्वाह के लिए है, एक प्रकार धर्म प्रचार साधु संत भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, एक प्रकार अपने परिजन जो सज्जन है जहाँ सोशल काम है शादी मुरादी में जाना उसके लिए, और एक अपने धंधे में लगाने के लिए ताकि धंधा बढ़े, एक इमरजेंसी में रखने के लिए है। जैसे 5 धन का विभाजन भागवत ने बताया, तो मैं विज्ञापन एक इसलिए कह रहा था कि विज्ञापन प्रचार के लिए बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु। वो अब हमारे लिए है तो हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ, लेकिन नहीं तो वो यज्ञ है पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये जो वो पशु की रोटी निकालते हैं, पितरों के लिए निकालते हैं, मेहमानों का यज्ञ कर, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, तो ये पांच यज्ञ सबको करने होते हैं। हर घर में पुराने जमाने में ये यज्ञ होते थे। अब यज्ञ पाप तो वही हो रहे हैं, लेकिन उसके प्राश्चित नहीं हो रहा है। इसलिए सरल तरीका चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है कि एक ही यज्ञ संकीर्तन में घर में करो, तो आपके शुद्ध कर्म हो जाएंगे और भगवान के आने से सब चीजें अपने आप शुभ हो जाती हैं। और भगवान केवल अपने नाम के उच्चारण करने से आ जाते हैं, कुछ और बुलाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। और हाँ प्रभु जी, जब कथा होता है तो अलग अलग श्रोता को सही है, बिल्कुल अलग अलग, जितनी उसकी सुनने में कंसंट्रेशन होगी, जितनी उसके अंदर बुद्धि ग्रहण करने की होगी और जितनी भगवान की कृपा होगी आखिर, उतना ही उसको समझ में आएगा। एक तो कंसंट्रेशन कभी नहीं होती, इसलिए कुछ श्रोता होते हैं जो बैठते हैं शरीर से यहां बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और जाता है। तो सुनना कानों से नहीं है, दिमाग से समझना है। और सुनने के तीन भाग हैं, और प्रायः तीन भाग सुनने के केवल कोई साधु संत ही करता है, हर एक नहीं करता है। सुनने का मतलब है कान से जानकारी प्राप्त करना, दिमाग से समझना और दिल से करना। जब तक तीनों होते हैं तभी श्रवण पूरा होता है, जिसको वेदों में तीन शब्द कहे, श्रवण, निध्यासन और श्रवण मनन और निध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब समझना, उसको मानना, और निध्यासन मतलब उसको जीवन में अभ्यास में लाना। सुना आपने, भगवान का नाम जपना चाहिए, घर में भगवान का मंदिर करना चाहिए, समझ भी लिया, लेकिन घर में नहीं बनाया तो भी श्रवण पूरा नहीं हुआ। श्रवण फल तब देता है निश्चित रूप से जब आदमी उसको पूर्ण रूप से, और फिर हर एक की समझता वो है, जो उसको अच्छा लगता है वो उसको समझ में आएगा, और जो उसको समझ में आएगा उसमें भी उसका लाभ हो सकता है, जो बात एक भी समझ में आ जाए तो। और समझने के लिए एक और भी बात कह, आप अपने आप किताब पढ़ेंगे, शास्त्र जाके पढ़ेंगे तो 25% समझ पाएंगे। क्लास में सत्संग सुनेंगे, भक्तों के संग में बैठेंगे तो 50% समझ में आएगा। अब यहां से सुनने के बाद घर जाके दोबारा पढ़ेंगे तो 75% समझ में आएगा, लेकिन 25% अनुभव से आएगा, किताब से नहीं आएगा। इसलिए क्लास में बैठ के सुनने से ज्यादा समझ में आता है पढ़ने से, क्योंकि यहां वातावरण होता है बहुत, और की वाइब्रेशन भी है, उसका हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। भाई घर में किताब पढ़ते पढ़ते छाती के ऊपर किताब गिर जाए, सो जाए तो क्या फर्क पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां सोएगा तो कोई जगाएगा तो सही, कम से कम किताब तो नहीं जगाएगा, भारी होगा तो जगाएगा, गिराना सर के ऊपर तो थोड़े से जग जाएगा। तो क्लास निश्चित रूप से अटेंड करना, जैसे भी ये प्रभुपाद का स्टैंडर्ड है, सुबह और शाम की क्लास ये निश्चित रूप से होनी चाहिए। और तीसरा, कृष्ण बुक रात को पढ़ के सोना चाहिए। ये तीन सिंपल फार्मूला है, लेकिन इसको पूरा करने में अभी हमारे को 20-25 साल लग गए, लेकिन हो नहीं रहे। निश्चित ये तीन क्लास होने चाहिए तो सुरक्षित। पुराने जमाने के भक्त कहते थे, 2 hours संकीर्तन इन द स्ट्रीट्स कीप्स माया अवे। प्रसाद के बाद 2 घंटे रोड पे संकीर्तन करेंगे, माया आपको निकट नहीं आएगी। ये नियम था इसका। 9 बजे का प्रसाद क्लास हुई, प्रसाद खाया और करताल मृदंग उठाया और रोड के ऊपर गए, और 12:30-12 बजे वहां से थक के और वापस आएंगे, तब आके अपना शाम काम करें। ये तो रोज का नियम था, यही प्रचार था। और कोई पुस्तक साथ ले जाते थे, एक दो जो होता वितरण करना है, कीर्तन करना है, वापस आना है, आया, प्रसाद खाया, भगवान का कटा क्षमा हो गया, एवरी डे विदाउट फेल। अब मंदिर में इतना काम होता है कि जा नहीं सकते, पहले मंदिर थे नहीं, यही काम था, और इस काम से ये मंदिर बने हैं। अभी भी संकीर्तन करना बहुत आवश्यक है, सबसे बड़ा हमारा अहंकार खत्म होता है। हम बाहर रोड के ऊपर संकीर्तन करना हमारा अहंकार खत्म करता है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का सरल एक ही साधन है, नाम संकीर्तन। युग अवतार क्या हरिनाम संकीर्तन करने के लिए एक युग अवतार हुआ, तो उनकी कृपा उसमें छोटा सा रथ बनाना चाहिए गौर निताय का, और कम से कम स्टार्ट वन से भी करना चाहिए संकीर्तन अलग जगह पे, शाम के वक्त 7 बजे संकीर्तन, 7:30 बजे आरती के बाद यहां से जाएंगे, संकीर्तन इस एरिया में होगा, 1 घंटा कीर्तन करेंगे, किसी के घर में एंड करेंगे, भक्त में भक्त के प्रसाद यहां से बन के जाएगा, वहां सब लेंगे, ऐसे वन से वीक का प्रोग्राम कैसे भी करें तो अच्छा है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मॉरिशस में 2 वीक ऐसे करते हैं, शाम को छोटा रथ बना हुआ है, लाइट ये वो गौरनेता उसके ऊपर है और साउंड सिस्टम है, 200-250-300 भक्त इकट्ठे होते हैं, 2 वीक प्रसाद मंदिर से बनता है, बस एक मंदिर की रखी हुई है, लोगों को अलग जगह से लेके आएगी, संकीर्तन 1.5 घंटा चलेगा, 7:30 से 9 बजे तक, 9 बजे किसी के घर में एंड, सब प्रसाद लो अपने घर जाओ, ये रोज वो पुलिस वाला भी एक साथ चलेगा, आगे आगे रास्ते ट्रैफिक ठीक करें, ये तो 2 वीक नेम है, ये मस्ट है, संकीर्तन डिपार्टमेंट उसका नाम ही संकीर्तन डिपार्टमेंट है, उसका काम ये है कि ये काम ये व्यवस्था करना। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज मुझे कहते हैं, अब हम बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाला कहाँ चले गए, पहले रोड पे दिखते थे, अभी है कहाँ, अब सब बंकर्स में है। यही हमारा प्रचार की पद्धति, कैसे भी अगर हम कैसे भी हम कर पाए, कांग्रीगेशन का यही सबसे ज्यादा उपयोग है कि उसको संकीर्तन में लगाएं, जिस एरिया में वहां रहें वहां वन से भी कीर्तन का प्रबंध किया जाए, कांग्रीगेशन के लिए बहुत, मंदिर के भक्त सब नहीं जा सकते, मंदिर की सेवा है, लेकिन एक भक्त भी उसमें उनको प्रोत्साहन दे ताकि हर कांग्रीगेशन नगर संकीर्तन करे। इस देश में प्रभात फेरी पुराना एक कल्चर जैसे था, लेकिन खत्म हो गया, अब तो वो नाम का रह गया, अब सायंस फेरी करो, प्रभात को कोई उठता नहीं है, अब संध्या काल की फेरी शुरू करो, समय का परिवर्तन होगा लेकिन ये प्रैक्टिकल है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।